एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है
और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले सभी सुनने वालों का भी बहुत स्वागत है।
तो आज हम एक काफी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। इसने अमेरिका में गरीबी और क्या कहते हैं कम वेतन वाली नौकरियों की असलियत को सामने रखा। बारबरा एरनरॉयच की निकल एंड डाइम्ड।
हाँ, पूरा टाइटल है निकल एंड डाइम्ड ऑन नॉट गेटिंग बाय इन अमेरिका। और ये अपने आप में मतलब एक सामाजिक प्रयोग जैसा है।
प्रयोग? कैसा प्रयोग?
लेखिका ने, बारबरा ने, खुद कम पैसे वाली नौकरियां की ये देखने के लिए कि क्या अमेरिका में सिर्फ मेहनत करके गुजारा हो सकता है, खासकर तब जब आप बिल्कुल नीचे के लेवल पर हों।
अच्छा, और ये किताब हालांकि काफी पहले लिखी गई थी, शायद 2 दशक पहले, अमेरिका के बारे में।
हाँ, 2001 के आसपास।
पर इसकी बातें आज भी उतनी शायद ज्यादा ही जरूरी लगती हैं, है ना? मतलब कम तनख्वाह, बढ़ती महंगाई, घर चलाने का खर्चा, अमीर गरीब के बीच की खाई।
बिल्कुल, ये मुद्दे तो आज देखिए पूरी दुनिया में है। हमारे अपने देश में भी हम रोज ये सब देखते सुनते हैं।
सही कहा।
तो आज की ये जो बातचीत है, ये हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि काम, मजदूरी, गरीबी, इनको लेकर हमारी अपनी समझ कितनी सही है। क्या सच में बस मेहनत करने से सब ठीक हो जाता है,
या फिर दिक्कत कहीं कहीं सिस्टम में ही है? इस पर सोचना जरूरी है।
बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले लेखिका के बारे में थोड़ा जानना भी अच्छा रहेगा।
बारबरा एरनरॉयच कौन थी ये?
हाँ, बारबरा एरनरॉयच, जिनका 2022 में देहांत हुआ, वो अमेरिका की काफी जानी मानी लेखिका थीं, सामाजिक आलोचक थीं, एक्टिविस्ट भी थीं। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है?
क्या?
उनकी पढ़ाई लिखाई साइंस में हुई थी। सेल्यूलर इम्यूनोलॉजी में पीएचडी की थी उन्होंने, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी से।
अरे वाह, इम्यूनोलॉजी से सामाजिक मुद्दों पर लिखना,
ये तो बड़ा ही अलग रास्ता चुना उन्होंने।
बिल्कुल। उन्होंने साइंस में करियर नहीं बनाया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी पत्रकारिता और जिसे हम खोजी लेखन कहते हैं उसको दे दी। वो खासतौर पे क्लास, जेंडर, हेल्थ केयर और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर बहुत तीखी और सीधी बात लिखती थी।
तो उनकी लिखने के तरीके में, उनके नजरिए में ऐसा क्या खास था जिसने निकल एंड डाइम्ड को इतना असरदार बना दिया?
मुझे लगता है दो चीजें। एक तो उनकी जो साइंटिफिक ट्रेनिंग थी, उससे उनको चीजों को बारीकी से देखने, विश्लेषण करने, सबूत जुटाने की आदत थी। और दूसरा, एक एक्टिविस्ट के तौर पर उनका जो अनुभव था और जो एक गहरी सहानुभूति थी गरीबों के लिए।
मतलब वो सिर्फ कमरे में बैठकर दूर से देख के लिखने वाली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो अपनी मध्यम वर्गीय आरामदायक जिंदगी से बाहर निकली और खुद कम तनख्वाह वाली नौकरियां की। कभी वेट्रेस बनी, कभी घरों में सफाई की, कभी वॉलमार्ट जैसे स्टोर में काम किया।
सच में?
हाँ, उन्होंने उस जिंदगी को जिया, इसीलिए उनकी बातों में इतनी सच्चाई है, इतनी गहराई है। ये कोई आप समझे पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, ये बहुत गंभीर पड़ताल थी कि जो आर्थिक नीतियां बन रही हैं उनका आम लोगों पर असल में क्या असर पड़ रहा है।
चलिए आप सीधे किताब पर आते हैं। इसका निचोड़ क्या है, क्या कहना चाह रही है किताब?
जैसा हमने कहा, ये उनके उस प्रयोग की कहानी है। और बुनियादी सवाल ये था कि क्या अमेरिका जैसे अमीर देश में कोई भी इंसान जो ईमानदारी से मेहनत करने को तैयार है, वो न्यूनतम मजदूरी पर जी सकता है? मतलब पेट पाल सकता है, सिर पर छत रख सकता है?
और किताब का जवाब क्या है इस सवाल का, उसका मुख्य तर्क क्या है?
किताब का जवाब बहुत सीधा और साफ है, नहीं, मुमकिन नहीं है। मुख्य तर्क ये है कि अमेरिका में जो एक आम धारणा है, जिसे अमेरिकन ड्रीम कहते हैं ना,
कि कोई भी मेहनत करके ऊपर उठ सकता है।
बिल्कुल, तो वो कहती है कि ये धारणा असल में एक मिथक है, एक कहानी है, हकीकत नहीं। वो अपने अनुभवों से और आंकड़ों से दिखाती हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है वो असल में जीने के लिए काफी ही नहीं है।
तो समस्या लोगों के आलस में या उनकी काबिलियत में नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में है।
हाँ, वो यही साबित करती हैं। कम तनख्वाह, ऊपर से बेतहाशा बढ़ते घर के किराए, हेल्थ केयर का खर्चा और काम करने की मुश्किल शर्तें, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये किसी एक इंसान की नाकामी नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है।
तो फिर किताब लिखने का उनका मकसद क्या था? वो किसे ये कहानी सुनाना चाह रही थी?
देखिए, मुझे लगता है पहला मकसद तो उन लाखों लोगों की जिंदगी को सामने लाना था जो कम पैसे में बहुत जरूरी काम करते हैं पर जिन्हें हम अक्सर देखते भी नहीं, अनदेखा कर देते हैं। वो उनके रोज के संघर्ष को एक मानवीय चेहरा देना चाहती थी। दूसरा, वो ये दिखाना चाहती थी कि गरीबी से निकलने के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो व्यक्तिगत नहीं है, वो संरचनात्मक है, मतलब सिस्टम की वजह से है।
और शायद उन लोगों को भी जगाना जो इस सच्चाई से अनजान है, जैसे कि हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग या अमीर लोग, और पॉलिसी बनाने वालों को भी शायद।
हाँ बिल्कुल, ये किताब असल में हर उस इंसान के लिए है जो समाज में ये जो आर्थिक गैर बराबरी है उसे समझना चाहता है और ये सवाल उठाना चाहता है कि क्या वाकई सिर्फ मेहनत ही काफी है।
तो ये जो प्रयोग था उनका, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइडिया कहाँ से आया?
इसकी जड़ें 1996 के अमेरिका के वेलफेयर रिफॉर्म कानून में थीं। उस कानून के तहत सरकारी मदद के नियम बदले गए थे और बहुत सी गरीब महिलाओं, अकेली माओं को कहा गया कि वो सरकारी मदद छोड़कर नौकरी करें।
अच्छा,
तो एरिन रिच के मन में ये सवाल उठा कि ये औरतें जो शायद $6-7 प्रति घंटा कमाएंगी, वो अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगी। ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा था।
तो उन्होंने सोचा कि खुद ही आजमा कर देखा जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ नियम भी बनाए होंगे अपने लिए।
हाँ बिल्कुल, नियम साफ थे। पहला, वो अपनी पुरानी पहचान, अपनी शिक्षा, अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी। दूसरा, उन्हें जो भी सबसे ज्यादा पैसे वाली अकुशल नौकरी मिलेगी वो करनी होगी। तीसरा, अपनी कमाई से ही रहने लायक जगह ढूंढनी होगी। और चौथा, हर नए शहर में वो सिर्फ $1,300 लेकर गईं। ये पैसा पहले महीने के किराए और सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए था, इससे ज्यादा नहीं।
और उन्होंने ये भी माना, जो कि बड़ी बात है, कि उनके पास कुछ फायदे थे। वो गोरी थी, पढ़ी लिखी थी, सेहतमंद थी, उनके साथ बच्चे नहीं थे।
हाँ हाँ,
ये ईमानदारी भी जरूरी थी ना?
हाँ, बहुत जरूरी। उन्होंने साफ लिखा कि अगर मैं इतने फायदों के साथ ये नहीं कर पा रही तो सोचिए उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा जिनके पास ये सब भी नहीं है, जिनकी जिंदगी में और भी मुश्किलें हैं।
तो पहला पड़ाव था फ्लोरिडा का की वेस्ट, टूरिस्ट जगह है। वहाँ उन्होंने वेटरेस का काम किया। कैसा रहा वो अनुभव, क्या खास बातें निकली वहाँ से?
की वेस्ट में काम तो मिला, लेकिन क्योंकि वो टूरिस्ट जगह है, वहाँ रहने का खर्चा, खासकर किराया, बहुत ज्यादा था। तो सबसे बड़ी सीख यही थी कि तनख्वाह और जो टिप मिलती थी वो मिलाकर भी घर चलाना बहुत मुश्किल था।
काम कैसा था?
काम की थकान जबरदस्त थी। घंटों खड़े रहना, वजन उठाना, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, फिर ग्राहकों के सामने लगातार मुस्कुराते रहना चाहे आपका मूड कैसा भी हो। और कमाई का कोई भरोसा नहीं था क्योंकि वो काफी हद तक टिप पर निर्भर थी।
और उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे उनकी कहानियों से क्या पता चला?
हाँ, उन्होंने अपनी कुछ सहकर्मियों का जिक्र किया है, जैसे गेल जो एक अनुभवी वेट्रेस थी। वो एक वैन में रहती थी क्योंकि घर का किराया नहीं दे सकती थी। एक और साथी जोन, वो गर्भवती थी और एक सस्ते से मोटेल में रह रही थी। मतलब सबकी जिंदगी में बहुत अस्थिरता थी, स्वास्थ्य की समस्याएं थी और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। एक नौकरी से गुजारा नहीं होता था तो दूसरी करनी पड़ती थी, फिर भी मुश्किल से काम चलता था। कोई इमरजेंसी आ जाए तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी।
फ्लोरिडा के बाद वो गई मेन राज्य, पोर्टलैंड शहर। वहां उन्होंने सफाई का काम चुना। ये अनुभव कैसा था वेटरेसिंग से अलग?
उन्होंने शायद सोचा था कि ये काम वेटरेसिंग से कम थकाने वाला होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने एक कंपनी के लिए घरों की सफाई का काम किया और एक नर्सिंग होम में डाइटरी एड का भी काम किया।
अच्छा,
यहाँ की खास बातें थीं, एक तो बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत, केमिकल का इस्तेमाल जिससे सेहत पर असर पड़ता था। दूसरा, ये काम बहुत अदृश्य किस्म का था, मतलब आप खाली घरों में जाते, सफाई करते और मालिक के आने से पहले निकल जाते। कोई आपको जानता नहीं, कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल अलग थलग।
और कंपनी का माहौल कैसा था?
ऊपर से कंपनी का बहुत सख्त कंट्रोल था, नियम बहुत कड़े थे, हर वक्त शक का माहौल रहता था।
और नर्सिंग होम वाला काम, वो थोड़ा अलग रहा होगा?
हाँ, वो थोड़ा अलग था। वहाँ कम से कम इंसानों से जुड़ाव था, बुजुर्गों की, बीमारों की देखभाल करना भावनात्मक रूप से भारी जरूर था, पर वो सफाई के काम जैसा बिल्कुल अकेला नहीं था। लेकिन नतीजा
वही रहा,
मतलब दो दो नौकरियां करने के बाद भी सस्ता घर ढूंढना और उसका किराया देना लगभग नामुमकिन था। तो ये साफ हो गया कि भले ही जगह थोड़ी सस्ती हो, लेकिन कम तनख्वाह और ज्यादा खर्चों का जो समीकरण है वो हल नहीं होता।
अब आखिरी पड़ाव मिनेसोटा का मिनियापोलिस। वहां उन्होंने वॉलमार्ट जैसी एक बड़ी रिटेल कंपनी में काम किया। वहां क्या उम्मीद थी और क्या हुआ असल में?
उम्मीद शायद यही थी कि भाई बड़ी कंपनी है तो तनख्वाह थोड़ी बेहतर होगी। वहां उन्हें $7 प्रति घंटा मिल रहे थे और शायद माहौल भी थोड़ा ठीक होगा। लेकिन अनुभव कुछ और ही निकला।
कैसा?
लंबी लंबी ओरिएंटेशन क्लासेस होती थीं जिनमें यूनियन के खिलाफ बातें बताई जाती थीं, कर्मचारियों पर कड़ी नज़र रखी जाती थी, अपमानजनक ड्रग टेस्ट होते थे, काम भी बहुत उबाऊ और थकाने वाला था, घंटों खड़े रहकर कपड़े तय करना, सामान सही जगह पर लगाना।
रहने की दिक्कत, वो तो वहां भी होगी।
वो सबसे बड़ी चुनौती बन गई। वहां भी एक नौकरी की तनख्वाह पर एक ठीक ठाक अपार्टमेंट मिलना नामुमकिन था। उन्हें आखिरकार एक बहुत ही खस्ता हाल, असुरक्षित से लॉज या कहें कि रेजिडेंशियल होटल में रहना पड़ा। तलता रहता था कि दूसरी नौकरी ढूंढना और करना भी बहुत मुश्किल था। तो यहीं आकर उन्हें लगा कि नहीं, इस तरह से मैं जिंदगी नहीं बना सकती, और उन्होंने अपना प्रयोग यहीं खत्म कर दिया।
यानी एक बड़ी जानी मानी कंपनी में थोड़ी बेहतर तनख्वाह के साथ भी गुजारा करना और आत्मनिर्भर बनना मुमकिन नहीं हो पाया।
बिल्कुल, ये यही दिखाता है कि समस्या किसी एक खास जगह या एक खास तरह की नौकरी की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है जहाँ कम वेतन पर काम करने वाले के लिए सिर्फ जिंदा रहना ही एक जंग बन जाता है।
किताब के आखिर में एरिन रिच अपने पूरे अनुभव का एक तरह से मूल्यांकन करती हैं। उनका अंतिम निष्कर्ष क्या था?
उनका निष्कर्ष बहुत सीधा और साफ था। वो कहती हैं कि मैं अपने प्रयोग में फेल हो गई। मेरे पास इतने सारे फायदे थे, मैं स्वस्थ थी, मेरे पास कार थी, मेरे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी मैं गुजारा नहीं कर सकी।
और इस नाकामी की वजह
वो क्या बताती हैं? वो कहती हैं कि ये जो कम वेतन वाली अर्थव्यवस्था है, ये कोई खुली प्रतियोगिता नहीं है, ये एक तरह से जबरदस्ती का सिस्टम है जहां मजदूरी को जानबूझकर इतना कम रखा जाता है कि लोग मुश्किल से जी पाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मालिकों के पास बहुत ज्यादा ताकत है और जो मजदूरों के संगठन हैं, यूनियनें हैं, वो कमजोर हो गई हैं।
उन्होंने उन छिपी हुई कीमतों का भी जिक्र किया था जो मजदूर चुकाते हैं, है? जो दिखती नहीं है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है उनकी किताब की कि इस कम मजदूरी की एक छिपी हुई कीमत होती है, जैसे ठीक से खाना ना खा पाना क्योंकि या तो पौष्टिक खाना महंगा है या उसे बनाने का वक्त ही नहीं मिलता, बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास ना जा पाना क्योंकि पैसे नहीं हैं या छुट्टी नहीं मिलेगी, और हर वक्त पैसे की चिंता का जो तनाव है वो अलग। वो कहती हैं कि हम ग्राहकों को जो सस्ता सामान मिलता है या जो सर्विसेज मिलती हैं, उनकी असली कीमत ये मजदूर चुका रहे हैं, अपनी सेहत से, अपने आराम से, अपनी जिंदगी से।
तो आखिर में उनकी मांग क्या थी? क्या समाधान सुझाया उन्होंने?
उनकी मांग थी लिविंग वेज की, यानी इतनी मजदूरी जिससे इंसान सिर्फ जिंदा न रहे बल्कि इज्जत से जी सके, सस्ते और अच्छे घरों की उपलब्धता और समाज की जिम्मेदारी। उनका कहना था कि गरीबी किसी एक इंसान की व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये एक नैतिक संकट है, एक मॉरल क्राइसिस है जिसे हम सबको मिलकर देखना होगा, समझना होगा और हल करना होगा।
तो इस पूरी किताब से कुछ खास बातें या कहूं के संदेश उभर कर आते हैं। जैसे पहला तो ये कि न्यूनतम मजदूरी पर गुजारा करना अब एक मिथक बन चुका है।
बिल्कुल, जो मिनिमम वेज तय होता है वो असल में रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए काफी नहीं है। गणित बैठता ही नहीं है, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कमाई हमेशा खर्चों से पीछे रह जाती है।
दूसरी बात कि गरीब होने की अपनी छिपी हुई लागतें होती हैं, मतलब गरीब होना ही अपने आप में महंगा पड़ जाता है।
हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे पर ये सच है। जैसे अगर आप महीने का किराया एक साथ नहीं दे सकते तो आपको हफ्ते या रोज के हिसाब से ज्यादा महंगा किराया देना पड़ता है।
अच्छा।
सस्ता पौष्टिक खाना खरीदने या बनाने का समय या साधन नहीं है तो महंगा और अनहेल्दी फास्ट फूड खाना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक छोटी सी बीमारी भी आपको कर्ज में डुबो सकती है। ये एक तरह का जाल है जिसे पॉवर्टी ट्रैप कहते हैं, इससे निकलना और मुश्किल होता जाता है।
तीसरा, इन कम पैसे वाली नौकरियों का शरीर और दिमाग पर जो बोझ पड़ता है।
हाँ, लेखिका ने इसे बहुत शिद्दत से महसूस किया और लिखा है, लगातार थकान, बदन में दर्द, हर वक्त पैसे की चिंता, मैनेजमेंट का बुरा बर्ताव जिससे आत्मसम्मान कम होता है, ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, ये इंसान को अंदर से तोड़ देती है।
और एक और अहम मुद्दा है इन कामकाजी गरीबों की अदृश्यता, उन्हें अनदेखा करना, उन्हें इंसान न समझना।
ये बहुत ही जरूरी बात है। जो लोग हमारे लिए इतने जरूरी काम करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना परोसते हैं, हमारे ऑफिस और घर साफ करते हैं, दुकानों में सामान दिखाते हैं, हम अक्सर उन्हें देखते भी नहीं, जैसे वो है ही नहीं। उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो डिस्पोजेबल हो, उन्हें कभी भी बदला जा सकता है। समाज उनके सस्ते श्रम का फायदा तो उठाता है, पर उनकी जरूरतों, उनके सम्मान की परवाह नहीं करता।
ये उस अमेरिकन ड्रीम या कहें कि मेहनत से तरक्की वाली जो सोच है, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।
हाँ बिल्कुल, ये किताब साफ दिखाती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना कामयाबी की गारंटी नहीं है। लोग आलसी नहीं है, वो एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जहां ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। गरीबी अक्सर व्यक्तिगत नाकामी नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का नतीजा होती है।
और आखिर में मालिक और कर्मचारी के बीच जो शक्ति का असंतुलन है वो भी साफ दिखता है।
हाँ, मालिक का लगभग पूरा कंट्रोल, हर वक्त निगरानी, मनमाने नियम, नौकरी से निकालने का डर, ये सब दिखाता है कि कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी के पास अपनी बात कहने या अपनी स्थिति सुधारने की कितनी कम ताकत होती है।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो इन बातों को बहुत असरदार ढंग से कहती हैं, कुछ पर बात करें।
हाँ जरूर, एक जगह वो लिखती हैं जिसका मोटा मोटा मतलब ये है, ये जो कामकाजी गरीब हैं जिन्हें हम बड़े एहसान से ये नाम देते हैं, ये असल में हमारे समाज के सबसे बड़े परोपकारी हैं। वे अपने बच्चों को नज़रअंदाज करते हैं ताकि दूसरों के बच्चों की देखभाल हो सके। वे खुद खराब घरों में रहते हैं ताकि दूसरों के घर चमकते रहें। वे खुद अभाव सहते हैं ताकि महंगाई कम रहे और स्टॉक मार्केट ऊपर जाए।
वाह, ये तो बिल्कुल नजरिया ही बदल देने वाली बात है। ये कहना कि गरीब लोग बोझ नहीं बल्कि वो अपनी कम मजदूरी से समाज को एक तरह की सब्सिडी दे रहे हैं।
बिल्कुल, एक और बहुत जबरदस्त बात है, कोई भी काम कितना भी छोटा क्यों ना लगे, असल में अकुशल या अनस्किल्ड नहीं होता। हर काम में ध्यान लगाना पड़ता है, नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, दिमाग और शरीर का इस्तेमाल होता है।
हाँ, ये अकुशल का लेबल लगाकर अक्सर कम मजदूरी को सही ठहराया जाता है, जबकि हर काम की अपनी एक इज्जत है, अपना एक हुनर है जिसका सम्मान होना चाहिए।
तीसरा विचार, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, जब एक सेहतमंद इंसान जो मुश्किल हालात में लंबे समय तक काम करने को तैयार है, फिर भी अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता।
ये सीधी, सच्ची और चुभने वाली बात है। फिर से वही कि अगर कोई मेहनती और काम करने को तैयार होकर भी जी नहीं पा रहा, तो कमी उस इंसान में नहीं, कहीं और है, सिस्टम में है।
और एक आखिरी लाइन जो सीधे पढ़ने वाले को, हमें, आपको झकझोड़ती है, जब कोई इतनी कम तनख्वाह पर काम करता है कि उस पर वो जी भी न सके, तो उसने आपके लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है, उसने आपको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तोहफे में दिया है।
बाप रे, ये तो सीधे हमें आईना खिंचाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जो सहूलियतें हैं, जो हमें सस्ता सामान मिलता है, उसके पीछे कहीं किसी का ये अनदेखा बलिदान तो नहीं छिपा? क्या हम जाने अनजाने इस सिस्टम का हिस्सा हैं? तो ये जो सारी बातें हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इनसे क्या सीख सकते हैं या क्या कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली चीज तो शायद हमारे अपने रवैये में बदलाव की है। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में, दुकानों में, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी वाले, उनके प्रति थोड़ा ज्यादा सम्मान, थोड़ी ज्यादा हमदर्दी, उन्हें इंसान समझना, उनसे तमीज से बात करना, हो सके तो अच्छी टिप देना, छोटी छोटी चीजें हैं पर फर्क पड़ता है।
और एक उपभोक्ता के तौर पर, एक ग्राहक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है?
हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी बिजनेस को सपोर्ट करें जो अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हों। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती मिले, तो एक पल रुक कर सोचें कि कहीं इसकी असली कीमत कोई और तो नहीं चुका रहा। क्या ये इसलिए सस्ता है क्योंकि इसे बनाने वाले या बेचने वाले को सही दाम नहीं मिल रहे?
और बड़े स्तर पर, समाज या नीति के स्तर पर क्या किया जा सकता है?
हम ऐसी नीतियों की बात कर सकते हैं या उनका समर्थन कर सकते हैं जो लिविंग वेज यानी गुजारे लायक तनख्वाह को बढ़ावा दें, सस्ते और अच्छे घरों की उपलब्धता बढ़ाएं, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करें, एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं, वोट देते समय इन मुद्दों को ध्यान में रख सकते हैं। और अगर हम खुद किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां हम लोगों को काम पर रखते हैं, तो कोशिश कर सकते हैं कि बेहतर माहौल दें, सही मजदूरी दें।
शायद सबसे बड़ा बदलाव तो नजरिए का ही है, अपनी स्थिति के लिए शुक्रगुजार होना और साथ ही एक सामाजिक जिम्मेदारी महसूस करना। ये समझना कि बहुत से लोगों के लिए हालात बहुत नाजुक होते हैं, स्थिरता और संकट के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और यह अक्सर उनकी अपनी गलती की वजह से नहीं होता। तो इस पूरी बातचीत और इस किताब से आपके लिए सबसे जरूरी सीख या सबक क्या रहा?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि सिर्फ कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी नहीं है, खासकर जब आप कम तनख्वाह वाली नौकरियों के चक्कर में फंसे हों। ये उस पूरी सोच को चुनौती देता है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा ही। कई बार सिस्टम ही आपको आगे बढ़ने नहीं देता।
और कोई ऐसी खास बात जो आपके दिमाग में रह गई हो?
वो गरीबी के जाल वाली बात, पॉवर्टी ट्रैप, कि कैसे कम मजदूरी, ज्यादा खर्चे और सामाजिक सपोर्ट की कमी मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बना देते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम किसी व्यक्ति को दोष देने की बजाय सिस्टम की खामियों पर ध्यान दें।
मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि कैसे गरीब होना ही अपने आप में इतना महंगा हो सकता है। ये किताब उन लोगों की आवाज बनती है जिन्हें अक्सर सुना नहीं जाता और हमें समाज में मौजूद गहरी असमानता पर सोचने को, असहाय सवाल पूछने को मजबूर करती है।
और मेरे लिए ये एहसास बहुत गहरा था कि कैसे हम में से कई लोगों का आराम और सुविधा कहीं न कहीं इन कम वेतन वाले कर्मचारियों के अनदेखे संघर्षों पर टिकी होती है। ये सवाल मन में आता है कि क्या हम अनजाने में इस गैर बराबरी को बनाए रखने में भागीदार तो नहीं है? ये एक भारी पर जरूरी सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।